मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के तहत आज हम लोग खासकर यूक्रेन और रशिया को लेकर के जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उन्हें ही अलग अलग कोणों से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले एक दो जो छोटी सी सूचनाएं हैं वे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को आज दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, बेरोजगारों की बढ़ती आत्महत्या चिंतनीय। खासकर बहुत से स्टूडेंट ने मेल के जरिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर, जब आप कोई अच्छा एडिटोरियल कमेंट या आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं और आपको लगता है कि इसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसकी चर्चा कर दिया करें और यह भी बताएं कि उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे उनकी यह रिक्वेस्ट बहुत ही जेन्यून लगी, इसलिए दोस्तों मैं अब ऐसा कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, आप खुद ही उसमें से निकाल लेंगे, कर लेंगे, हम किसी दूसरे इशू पर बात करें, तो आप मुझे ऐसा बता सकते हैं। इसमें देखिए, दो कंट्रास्ट हमारे सामने रखे गए हैं। हो सकता है कि आप अपनी ओर से पढ़ते तो इस कंट्रास्ट को नहीं पकड़ पाते। कंट्रास्ट क्या है कि इस पूरे के पूरे कोरोना दौर में एक तरफ तो धनी व्यक्ति है जिनकी आमदनी लगातार बढ़ती चली गई है, कुछ आंकड़े इसमें दिए हुए हैं। दूसरी तरफ नौजवानों की भीड़ है जहां रोजगारों की लगातार कमी होती चली जा रही है, रोजगार के अवसर कम होते चले जा रहे हैं, जबकि रोजगार करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आंकड़े दिए हैं कि पिछले 5 सालों में ऐसे 12 करोड़ युवा बढ़े हैं, जबकि रोजगारों की जो संख्या है 1.40 करोड़ कम हो गई है। यानी कि सोच करके देखिए, 1.40 करोड़ रोजगार कम हो गए हैं जबकि काम करने वाले 12 करोड़ लोग बढ़ गए हैं। इस कंट्रास्ट में क्या स्थिति होगी? इस कंट्रास्ट का दुर्भाग्यजनक जो परिणाम दिखाई दे रहा है वो ये है, जो सरकार के द्वारा ही बताया गया है, कि 2020 में पूरे देश में लगभग 3548 आंकड़ा है, 3550 भी आप कह सकते हैं, 3500 भी कह सकते हैं लगभग शब्द का इस्तेमाल करते हुए, लोगों ने आत्महत्या की और वह भी बेरोजगारी के कारण। यह एक सिचुएशन है, राइट? अब आप देखिए कि जब आप इस एडिटोरियल कमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक आंकड़ा भर है और जो कंट्रास्ट की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये एक जो तथ्य है, इसका इस्तेमाल आप बहुत जगहों पर कर सकते हैं और ये कला आपके पास होनी चाहिए। बहुत जगहों पर कैसे? ये एक आपके सोशियोलॉजी का पार्ट बन सकता है, समाजशास्त्रीय हिस्सा बन सकता है कि ठीक है, उनके पास बेरोजगारी की स्थिति है, समस्या है, लेकिन क्या इस बेरोजगारी की समस्या के समाधान के रूप में हमारे पास कोई सामाजिक उपाय नहीं है? समाज को क्या करना चाहिए? चलिए, सरकार तो अपनी ओर से जो करेगी, कर सकती है, करेगी, लेकिन समाज को क्या करना चाहिए? तो क्या इस तरह की जो आत्महत्याएं हो रही हैं केवल एक राजनीति का असफलता है, सरकार की असफलता है, या कहीं ना कहीं समाज की भी असफलता है? और यदि आप इसे अपने मेंस के जनरल स्टडीज के 4th पेपर से जोड़ दें तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की अपनी क्या मानसिक कमजोरी का भी प्रमाण नहीं है कि वो जद्दोजहद करने की स्थिति में नहीं है? क्या सच में उसकी सहन जो शक्ति है वो कम होती चली जा रही है? आप वहां भी ले जाकर के जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, तथ्य एक होता है, याद रखिए, लेकिन उसके उपयोग कई जगह हो सकते हैं और ये अभ्यास आपको करना चाहिए। एक बार यदि आप इस अभ्यास में थोड़े से सिद्धस्थ हो जाएंगे, करने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि आप पढ़ तो कम रहे हैं लेकिन आप अधिक समृद्ध हो गए हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं वे कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसी तरह से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हो, बस उनका कलेक्शन ही आपके लिए पर्याप्त है, ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं होती है, बशर्ते कि आप उनका बहुउद्देशीय उपयोग करना जानते हो। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा है दोस्तों, वो आप सब देख रहे हैं, अखबारों में आप सब पढ़ रहे हैं, उसकी जो डे टू डे की जो इवेंट्स हैं उन्हें बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं, लेकिन इन इवेंट्स से ही एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास नए नए तथ्य आते चले जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी कि जब सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ निंदा प्रस्ताव के ऊपर, जो रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, तो उसमें 3 देश अनुपस्थित रहे जिसमें एक भारत भी था, भारत अनुपस्थित रहा। इसका मतलब है देखिए कि अनुपस्थिति का अर्थ तटस्थता नहीं होती है, बल्कि सच पूछिए तो कहीं न कहीं किसी न किसी का प्रत्यक्ष रूप से पक्ष लेना होता ही है। जैसे बहुत सीधी सी बात है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, और अगर हम इस अटैक को सही नहीं मान रहे हैं, गलत है। यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, सार्वभौम राष्ट्र है, उसको अपनी तरफ से निर्णय लेने का हक है, उसकी अखंडता बनी रहनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि उस पर अगर कोई अटैक कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। इसलिए अगर हम अनुपस्थित रहते हैं तो पूरी तरह से आप ये मत मान करके चलिए कि यह तटस्थता है। इस एडिटोरियल कमेंट में इसी तथ्य को उठाया गया है इस रूप में कि क्या सच में अभी जिस तरह की स्थितियां बनती चली जा रही हैं, उन स्थितियों को देखते हुए भारत की यह तटस्थता जायज है। इसे आप इस रूप में ले सकते हैं कि धीरे धीरे आप महसूस कर रहे होंगे, जब आप घटनाओं को पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, कि रूस के प्रति जो विश्व जनमत है वो खिलाफ होता चला जा रहा है। इस खासकर युद्ध में हर कोई रूस को गलत ठहरा रहा है। कल ही बकायदे रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, और यहां तक कि परमाणु युद्ध भी हो सकता है। आप सोच करके देखिए, अगर रूस इतने आक्रामक स्टेटमेंट दे रहा है और एक देश पर उसने बकायदे आक्रमण कर दिया है, और उस आक्रमण से अब नागरिक भी हताहत हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, तो विश्व जनमत तो उसके खिलाफ खड़ा होना ही होना है, और वह हो रहा है। तो इस एडिटोरियल कमेंट में यही बात कही गई है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो रही है, तो ऐसे समय में क्या भारत का तटस्थ बना रहना जायज है। इसे आप पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम रूस की तरफ ही बने रहते हैं तटस्थता का सहारा लेकर के, तो दूसरे लोग इसे इस रूप में नहीं देखेंगे, और फिर जब अगर रूस बिल्कुल अलग थलग पड़ गया तो भारत की फिर जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी होगी वो किस तरीके की होगी, विश्व के दूसरे देशों के साथ उसके संबंध किस तरीके के बन पाएंगे, यह एक चिंता का विषय है। तो यह भी एक कोण उभर कर आता है। दूसरी जो एक बात मुझे अब दिखाई देने लगी है वह यह है कि जो वर्ल्ड एजेंसीज तैयार की गई हैं, आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, इसके बाद फिर दूसरी एजेंसियां भी धीरे 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 अस्तित्व में आने लगी। विश्व में व्यापार हो सके तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, विश्व का फाइनेंस हो सके तो फिर आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक आ गए, विश्व के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड एजेंसीज आने लगी, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी थी वो थी यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पज ही है विश्व को अगले महायुद्ध से बचाना, सुरक्षा करना विश्व की। अब यहां दो बातें हमारे सामने बहुत स्पष्ट है। जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो कंस्ट्रक्शन है, जो बनावट है, उसकी संरचना है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। आप जानते हैं कि उसके जो पांच देश हैं वो उसके स्थायी सदस्य होते हैं, अदरवाइज तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो बाकी मेंबर होते हैं वो बदलते रहते हैं दो दो साल में। जो ये पांच स्थायी सदस्य हैं, यानी कि केवल ये स्थायी सदस्य हैं बल्कि इनके पास वीटो पावर भी है, यानी कि ये पांच देश इतने शक्तिशाली हैं कि इनमें से अगर एक भी देश किसी भी मामले को नकार देता है तो वह मामला वहां से पारित नहीं होता, ये वीटो पावर है। अभी जैसे देखिए आपकी रूस पर निंदा प्रस्ताव आया, आप निंदा प्रस्ताव लेकर के आ गए, ठीक है, स्वाभाविक है कि उस पर रूस वीटो करेगा, और रूस ने वीटो कर दिया, वो निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लेकिन आप इसका अर्थ ये मत समझिए कि जब मालूम ही था कि रूस उसे वीटो करेगा तो लाने का क्या मतलब है, ये तो आई वॉश करना है, दिखावटीपना है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कि देखिए अब घटना घटी, हम इस पर बात कर रहे हैं तो आफ्टर ऑल दुनिया को पता चल गया ना कि क्या हुआ, और फिर बाकी देशों ने निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, इसका मतलब है कि इतने सारे देश रूस के खिलाफ है तो अर्थहीन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उसका जितना प्रभाव होना चाहिए उतना प्रभाव नहीं हो सकेगा, तो अनडेमोक्रेटिक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है, फिर जब हम दूसरे वर्ल्ड एजेंसीज पर आते हैं, जैसे मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि नहीं, ये पश्चिमी राष्ट्रों का ज्यादा पक्ष लेता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना के दौर पर जितना ज्यादा विवादास्पद रहा, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस पर किस किस तरह के आरोप लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब फिर सवाल ये खड़ा हो सकता है, आगे चल करके हो सकता है कि आपको इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने को मिले, कि फिर ये वर्ल्ड एजेंसीज कर क्या रही हैं, क्या इनकी अब कोई उपयोगिता रह गई है, और अगर उपयोगिता बनाए रखनी है तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या सुरक्षा परिषद के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्या वीटो पावर समाप्त कर दिए जाने चाहिए। इस तरह के कुछ प्रश्न उठकर धीरे धीरे खड़े होंगे, तो आपकी जो निगाह है, नजर है, वो इन सारे प्रश्नों पर भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से एक दोस्त का नाम है अमृत नारायण सतपति, भुवनेश्वर ओडिशा से, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।